अध्याय 36। निर्जन प्रदेश में लगभग 40 वर्षों तक इजरायली मरुधर की गुमनामी में खो गए। मूसा कहता है, हमारे कादेश बन को छोड़ने से लेकर जेरेद नदी पर होने तक 38 वर्ष बीत गए। उस बीच में यहोवा की शपथ के अनुसार उस पीढ़ी के सब योद्धा छावनी में से नष्ट हो गए, और जब तक वे नष्ट न हुए तब यहोवा का हाथ उन्हें छावनी में से मिटा डालने के लिए उनके विरुद्ध बढ़ा ही रहा। व्यवस्था विवरण 2 आयत 14-15। इन वर्षों के दौरान लोगों को लगातार स्मरण कराया गया कि वे परमेश्वर द्वारा ताड़े जा रहे थे। कादेश में विद्रोह करके उन्होंने परमेश्वर का तिरस्कार किया था, और इस समय के लिए परमेश्वर ने उन्हें अस्वीकार कर दिया था। वे उसकी वाचा के प्रति अनिष्ठावान प्रमाणित हुए थे, इसलिए उन्हें वाचा का चिन्ह खतना की विधि नहीं मिलनी थी। दासत्व के देश लौट जाने की उनकी अभिलाषा ने उन्हें स्वतंत्रता के अयोग्य ठहरा दिया था, और दासत्व से छुटकारे का स्मरण करने के लिए स्थापित फसह का पर्व नहीं मनाया जाना था। लेकिन मिलाप वाले तंबू की धर्मक्रिया होते रहना इस बात का प्रमाण था कि परमेश्वर ने अपने लोगों को पूरी तरह नहीं छोड़ दिया था। वह अभी भी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा था। उनके भ्रमण के इतिहास को दोहराते हुए मूसा ने कहा, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस विशाल जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा पर्सनल यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है, और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। नहम्या द्वारा उल्लिखित लेवी का भजन। निर्वासन और बहिष्कार के वर्षों के दौरान भी परमेश्वर के इज़राइल के लिए दायित्व को विस्तार पूर्वक चित्रित करता है। तब भी तूने, जो अति दयालु है, उनको जंगल में न त्यागा, न तो दिन को अगुवाई करने वाला बादल उन पर से हटा, और रात को उजियाला देने वाला और उनका मार्ग दिखाने वाला आग का खंभा। वरन तूने उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को, जो भला है, दे दिया, और अपना मन्ना उन्हें खिलाना न छोड़ा, और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा। 40 वर्षों तक तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी नहीं हुई, न तो उनके वस्त्र पुराने हुए और न उनके पावों में सूजन हुई। नहम्या 9 आयत 19-21। निर्जन प्रदेश में भटकना केवल कुड़कड़ाने वालों और विद्रोहियों के लिए दंडाज्ञा के तौर पर नियुक्त नहीं की गई, वरन वह उभरती हुई पीढ़ी के लिए प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने की तैयारी के रूप में अनुशासन की तरह थी। मूसा ने उनसे कहा, जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है कि वह तुझे नम्न बनाए और तेरी परीक्षा लेकर यह जान ले कि तेरे मन में क्या है, कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना, जिसे न तू और न तेरे पुरखे ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। व्यवस्था विवरण 8 आयत 5-2-3। उसने उसको जंगल में और सुनसान गर्जने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसका मार्गदर्शन किया, उसे निर्देश दिए और उसकी अपनी आंख की पुतली के समान सुधी रखी। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया, और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। व्यवस्था विवरण 32 आयत 40, यशाया 63 आयत 9। फिर भी बीहड़ में व्यतीत किए गए उनके जीवन के एकमात्र उल्लेख परमेश्वर के प्रति विद्रोह के दृष्टांत है। कोरह का विद्रोह 14,000 इसराइलियों के विनाश में प्रमाणित हुआ। ईश्वरीय सत्ता के प्रति तिरस्कार की भावना दिखाने वाली और भी अलग अलग घटनाएं थीं। एक बार एक इसराइली स्त्री और एक मिस्री के पुत्र ने, जो भिन्न जातियों के लोग मिस्र से इसराइलियों के साथ आए थे, अपने पड़ाव का स्थान छोड़कर इसराइलियों के डेरे से घुसकर अपना तंबू वहां तानने के अधिकार की मांग करने लगा। पवित्र आज्ञा के अनुसार तीसरी पीढ़ी तक एक मिस्री के वंशजों को मंडली से अलग कर दिया गया था, इसलिए वो अपना तंबू इसराइलियों के भाग में नहीं तान सकता था। उसके और एक इजरायली के बीच विवाद छिड़ गया और जब इस विषय को न्यायियों के समक्ष रखा गया तो निर्णय अपराधी के विरुद्ध दिया गया। इस निर्णय से क्रोधित होकर उसने न्यायी को शापित ठहराया और आवेग की अति में परमेश्वर के नाम का अपमान किया। उसे तत्काल मूसा के सम्मुख लाया गया। आदेश दे दिया गया था, जो अपने पिता या माता को श्राप दे वो भी निश्चय मार डाला जाए। निर्गमन 21 आयत 17। लेकिन इस विषय के प्रत्युत्तर के लिए कोई प्रयोजन नहीं बनाया गया था। ये अपराध इतना गंभीर था कि परमेश्वर के विशेष निर्देशन की आवश्यकता महसूस हुई। परमेश्वर की इच्छा भली भांति ज्ञात होने तक उसे निगरानी में रखा गया। स्वयं परमेश्वर ने दंडाज्ञा सुनाई। पवित्र निर्देश द्वारा ईश निंदा करने वाले को छावनी से बाहर ले जाकर पथराव द्वारा मार दिया गया। जो इस अपराध के साक्षी थे उन्होंने अपने हाथ अपराधी के सिर पर रखे और इस प्रकार उस पर लगाए गए आरोप की सच्चाई को प्रमाणित किया। फिर उन्होंने पहले पत्थर मारे और इसके तत्पश्चात पास खड़े लोग दंडाज्ञा क्रियान्वयन में सम्मिलित हुए। इसके बाद इसी प्रकार के अपराधों के निर्णय के लिए घोषणा की गई, और तू इसराइलियों से कह कि जो कोई भी अपने परमेश्वर को श्राप दे उसे अपने पाप का भार उठाना पड़ेगा। यहोवा के नाम की निंदा करने वाला निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग निश्चय उस पर पथराव करें, चाहे देशी हो चाहे परदेशी। यदि कोई उस नाम की निंदा करे तो वो मार डाला जाए। लेव्य व्यवस्था 24 आयत 15-16। ऐसे भी लोग हैं जो आवेग की अति में बोले गए शब्दों के लिए इतनी कठोर दंडाज्ञा देने में परमेश्वर के प्रेम और उसकी न्यायपरता पर आपत्ति करेंगे। लेकिन प्रेम और न्याय दोनों की ये मांग है कि परमेश्वर के विरुद्ध द्वेष से प्रोत्साहित कथनों को महापाप की श्रेणी में रखा जाए। पहले अपराधी को दिया गया दंड दूसरों के लिए इस बात की चेतावनी होगा कि परमेश्वर का नाम आदर के साथ लिया जाए। लेकिन यदि इस व्यक्ति के पाप को दंडित नहीं किया जाता तो दूसरे नीति भ्रष्ट हो जाते और इसके फलस्वरूप कई लोगों के जीवन बलिदान हो जाते। जो मिलीजुली जातियां मिस्र से इसराइलियों के साथ आई थीं, वे लगातार प्रलोभन और मुसीबत का स्रोत थीं। वे मूर्ति पूजा का त्याग कर सच्चे परमेश्वर की आराधना का दावा तो करते थे, लेकिन उनकी प्रारंभिक शिक्षा और प्रशिक्षण ने उनके चरित्र और आचरण को ढाल दिया था और वे परमेश्वर का निरादर करने और मूर्ति पूजा से भ्रष्ट हो चुके थे। अधिकतर कलह उत्पन्न कराने वाले वही होते थे और वही सबसे पहले शिकायत करते थे। परमेश्वर के प्रति बड़बड़ाहट और अपनी मूर्ति पूजक रीतियों से उन्होंने छावनी को प्रभावित कर दिया। निर्जन प्रदेश में लौटने के तत्पश्चात ही सबत के उल्लंघन की घटना हुई, ऐसी परिस्थितियों में जिन्होंने उसे असाधारण पाप बना दिया। प्रभु की इस घोषणा ने कि वो इसराइल का उत्तराधिकार समाप्त कर देगा विद्रोह की भावना को उत्पन्न किया। कनान से बहिष्कृत होने पर क्रोधित और परमेश्वर की व्यवस्था को ललकारने के लिए दृढ़ संकल्प लिए एक व्यक्ति ने सबत के दिन लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए बाहर जाकर चौथी आज्ञा का खुले रूप से उल्लंघन करने का प्रयत्न किया। निर्जन प्रदेश में पड़ाव डालने के समय सप्ताह के सातवें दिन अग्नि प्रज्वलित करना निषिद्ध था। ये निषेधाज्ञा कनान प्रदेश पर लागू नहीं होनी थी, क्योंकि वहां की अतिविषम जलवायु के कारण आग का जलना एक आवश्यकता थी, लेकिन बीहड़ में गर्माहट के लिए आग की आवश्यकता नहीं थी। उस मनुष्य का कृत्य चौथी आज्ञा का स्वैच्छिक व जानबूझकर किया गया उल्लंघन था, एक पाप विचारहीनता था, अज्ञानता नहीं वरन पूर्व विचारित। उसे रंगे हाथों पकड़ा गया और मूसा के सम्मुख लाया गया। ये घोषित कर दिया गया था कि सबत के उल्लंघन को मृत्यु से दंडित किया जाएगा, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं था कि दंड किस प्रकार दिया जाएगा। इस मामले को मूसा द्वारा प्रभु के सम्मुख लाया गया और निर्देश दिया गया, वो मनुष्य निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग छावनी के बाहर उस पर पथराव करें। गिनती 15 आयत 35। ईश निंदा और सबत उल्लंघन के पाप का दंड एक समान था, क्योंकि ये परमेश्वर की सत्ता के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति के बराबर था। हमारे समय में भी कई लोग सृष्टि के सबत को यहूदी संस्थापन मानकर अस्वीकार कर देते हैं और आग्रह करते हैं कि यदि इसका पालन किया जाना है तो इसके उल्लंघन के लिए मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि ईश निंदा के लिए भी सबत उल्लंघन के समान दंड दिया गया। तो क्या हम ये निष्कर्ष निकालें कि तीसरी आज्ञा भी यहूदियों पर ही लागू होती है? लेकिन मृत्यु दंड से प्राप्त युक्ति तीसरी, पांचवीं और लगभग दसों आज्ञाओं व चौथी आज्ञा पर बराबरी से लागू होती है। हालांकि परमेश्वर भले ही अभी अपनी व्यवस्था के उल्लंघन को सांसारिक दंड से दंडित न करे, लेकिन उसका वचन कहता है कि पाप का दंड मृत्यु है, और दंडाज्ञा के निर्णायक क्रियान्वयन में ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो उसकी पवित्र आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं उनके हिस्से में मृत्यु आती है। निर्जन प्रदेश में पूरे 40 वर्षों के दौरान लोगों को प्रत्येक सप्ताह मन्ना के द्वारा सबत के पवित्र कर्तव्य का स्मरण कराया जाता था, लेकिन ये भी उन्हें आज्ञाकारिता की ओर नहीं ले गया। उल्लंघन करने की चेष्टा नहीं की थी जैसा कि पहले किया गया था और जिसके लिए प्रतीकात्मक दंडाज्ञा दी गई थी। फिर भी चौथी आज्ञा के पालन करने में गंभीरता नहीं थी। अपने नबी द्वारा परमेश्वर कहता है, मेरे विश्राम दिनों को अति अपवित्र किया, यहेजकेल 20 आयत 43। और इसकी गणना प्रतिज्ञा के देश से पहली पीढ़ी के बहिष्करण के कारणों में की गई है। फिर भी उनकी संतानों ने सबक नहीं सीखा। 40 वर्षों में भटकने के दौरान सबत का उन्होंने इतना तिरस्कार किया कि परमेश्वर ने भले ही उन्हें कनान में प्रवेश करने से नहीं रोका, लेकिन उसने घोषणा की कि प्रतिज्ञा के देश में उनके बस जाने के बाद उन्हें अधर्मियों के बीच तितर बितर कर दिया जाए। कादेश से इसराइली निर्जन प्रदेश में लौट आए थे और उनके पड़ाव का समय समाप्त होने के पश्चात सारी इसराइली मंडली के लोग सिने नामक जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे। गिनती 20 आयत 1। यहां मरियम मृत्यु को प्राप्त हुई और उसे गाड़ा गया। लाल समुद्र के छोर पर हर्षोल्लास के दृश्य से जब इसराइल यहोवा की विजय का उत्सव मनाने के लिए नाचते गाते आगे को गए, निर्जन प्रदेश में कब्र तक, जहां जीवन भर का भटकना समाप्त हुआ, यही उन हजारों लोगों का अंत था जो मिस्र से ऊंची आशाएं लेकर आए थे। पाप ने उनके होठों से आशीष का प्याला छीन लिया था। क्या अगली पीढ़ी सबक सीखने वाली थी? इतने पर भी वे और अधिक पाप करते गए और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों की प्रतीति नहीं की। जब वो उन्हें घात करने लगता तब वे उसको पूछते थे और लौटकर परमेश्वर को यत्न से खोजते थे। उनको स्मरण होता था कि परमेश्वर उनकी चट्टान था और परम प्रधान परमेश्वर उनका छुड़ाने वाला था। भजन संहिता 78 आयत 32-35। फिर भी वे परमेश्वर की ओर नेक प्रयोजन से नहीं मुड़े। हालांकि जब उन्हें उनके शत्रुओं द्वारा पीड़ित किया गया, उन्होंने परमेश्वर से सहायता मांगी, जो उनके छुटकारे का एकमात्र स्रोत था। लेकिन उनका हृदय उसके साथ नहीं था, न वे उसकी वाचा के विषय सच्चे थे। परंतु वह जो दयालु है, वह उनके अधर्म को ढांपता और उन्हें नष्ट नहीं करता। वो बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है। उसको स्मरण रहा कि ये नश्वर है, ये वायु के समान है जो चली जाती है और लौट कर नहीं आती। भजन संहिता 78 आयत 37-39।